शांति। सबसे बड़ा सुख बोलो योग का, निरोगी काया। ये तो दुनिया में कहावत है। मैं आज आपका ध्यान दूसरी बात पर ले चल रहा हूं। बहुत बड़ा सुख है बाबा के महावाक्य सुनने में, है या नहीं? रोज हमें राह मिलती है, कठिनाइयों को पार करने का मार्ग मिलता है, माया को जीतने की नई नई विधियां मिलती हैं। इसी नजर से सुनते हैं सभी भगवान हमसे बातें करता है, उसका सुख मिलता है। तो हम आज चर्चा करेंगे स्लोगन पर आज के। बोलो किसको याद है? बहुत अच्छा, आपने पूरा ही सुना दिया, एक्यूरेट। परिस्थितियों को हमें पार करना है तो चाहिए स्वस्थिति की शक्ति। बहुत सुंदर शब्द है ये। केवल स्वस्थिति नहीं, स्वस्थिति की शक्ति। तो पहला प्रश्न है, और वो सबको क्लियर होना चाहिए, श्रेष्ठ स्वस्थिति किसे कहा जाता है? एक व्यक्ति है हमारे सामने जिसे हम कहेंगे इसकी स्थिति बहुत सुंदर है, क्या क्या होगा उसमें? अब सिंपल हो गया ना, बोलो है? अचल अडोल होगा। ये तो फाइनल बात कर दिया आपने, सबसे बड़ी। उसे पहले की बताओ, चलन बहुत रॉयल होगी, ठीक है। बोलो निश्चय बुद्धि, छोटी बात है। शांत स्वभाव होगा है, निश्चित। पूरी लाइन बोलो, हर्षित होगा बहुत। इन्होंने अचल अडोल पहले ही बोल दिया, ये फाइनल चीज है। कि छोटी मोटी बातें जीवन में आए तो हलचल में नहीं आएंगी। स्थिति अच्छी का अर्थ है व्यर्थ संकल्पों से दूर। अच्छी स्थिति का अर्थ है नम्र चित्त और निरहंकारी। अच्छी स्थिति माना योग बहुत अच्छा, बोल बहुत अच्छे, टोटल चेहरे पर पवित्रता की झलक। थोड़ी आगे हो जाओ बहने, टाइट न बैठो। ये अच्छी स्थिति है। अब अच्छी स्थिति में शक्ति होती है, जैसे सत्य में शक्ति है। अच्छी स्थिति जिसमें व्यर्थ संकल्प नहीं है उसमें बहुत शक्ति होती है। तो पहले हमें अच्छी स्थिति बनाने पे ध्यान देना है। अच्छी स्थिति बनाने के साधन हैं मुरली, अमृत वेले योग, सारा दिन अच्छा व्यवहार, अच्छी सेवा, दिल से सेवा को निर्विघ्न रखना। ये साधन हैं सब। चारों सब्जेक्ट का बल एक साथ होना, ज्ञान का बल भी, उससे स्थिति अच्छी होती है, योग का बल भी और कुछ श्रेष्ठ धारणाएं भी, और सेवा भी हमारे लिए बल बन जाए। सेवा केवल सेवा न रहे कि हम संदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन सेवा हमारे लिए क्या हो? बोलो, सुना नहीं? बल हो, जिस बल से हमें परिस्थितियों में बल मिले, योगयुक्त होने में भी अच्छी मदद मिले। सेवा का बहुत बड़ा फायदा होता है। अगर हम सेवा निष्काम भाव से कर रहे हैं तो आत्मा को योगयुक्त होने की मदद मिलती है। कईयों को सेवा उसका योग तोड़ा देती है। बहुत लोग कहते हैं हम तो सवेरे से शाम तक सेवाओं में बिजी हैं, योग का तो मौका ही नहीं मिलता। तो बाबा एक चीज बहुत कहते रहे मुरलियों में, जो सेवा स्थिति को बिगाड़े, जो सेवा खुशी को नष्ट करे, वो सेवा सेवा नहीं है। एक बार तो बाबा ने सीधा बोल दिया, सेवा छोड़ो पहले स्थिति बनाओ, क्योंकि नहीं तो विघ्न बहुत पड़ते हैं, ना सेवा में मजा आता है ना अपने को मजा आएगा, उसकी खुशी भी नहीं होगी, चित्त में एक संतोष भी नहीं होगा कि हमने बहुत अच्छी सेवा की है। आगे आ जाओ भाई, पीछे वालों थोड़ा आगे भी जगह बहुत है, आ जाओ। अब स्व स्थिति को हमें श्रेष्ठ बनाना है। मैं बाबा का पूरा ही महावाक्य सुना दूं आपको, स्व स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, और स्व स्थिति श्रेष्ठ बनाने का आधार है श्रेष्ठ स्वमान। तो बहुत सुंदर लिंक हो गया, स्वमान से स्थिति अच्छी, स्थिति अच्छी से परिस्थिति परिवर्तन, वो भी अच्छी हो जाएंगी। तो पहला ध्यान हम किस पे दें? स्वमान की प्रैक्टिस पर। इससे हमारा जीवन बदलेगा, हमारे विचार महान होंगे, हमारे संस्कार बदलेंगे, परिस्थितियां खत्म हो जाएंगी। बहुत इम्पोर्टेंट बात जिस पे हम सबको ध्यान देना है। कई लोग हर छोटी बात को परिस्थिति मान लेते हैं। हमें क्या मान लेना चाहिए? अब चिंतन करेंगे बहुत अच्छी तरह, हम कहाँ रह रहे हैं, कौन सा समय आ गया है, बोलो, सब जानते हो हैं? संगम युग का भी एंड, कलयुग का भी अंत, तो इसमें सब जगह अच्छाई मिलेंगी या गड़बड़? गड़बड़ बहुत मिलेंगी। हम स्वीकार कर लें हम कलयुग के अंत के भी अंत में आ गए हैं, अब चक्र चलते चलते बस वहीं पहुंचने वाला है जहां से चला था, इसलिए सब कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जैसा हम चाहते हैं। बहुत समझने की बात है ये, जैसा हमें मिला है उसी में स्थिति को श्रेष्ठ बनाने का मार्ग बनाना है। बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य, ये पहले आते थे 45 साल पहले, जो आत्मा हर परिस्थिति में श्रेष्ठ पुरुषार्थ का रास्ता बना ले वही ज्ञानी है। और जो इंतजार करते हैं ये ना हो ये ना हो ये ना हो, तब पुरुषार्थ हो उनका कभी नहीं होता। तो हम विभिन्न परिस्थितियों में ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ का मार्ग ढूंढ लें। आपका साथी ऐसा है जो पुरुषार्थी नहीं है, है वो आपका बड़ा। अब वो क्या चाहेगा? मैं पुरुषार्थी नहीं हूं तो ये हो या ना हो, बोलो, बोलो ना खुले दिल से, कन्या बहती है, ये भी ना हो। मैं सवेरे नहीं उठती, ये क्यों उठते हैं? अगर आप उठेंगे आपकी शिकायत होगी, ये जल्दी उठ जाती है, मेरी नींद खराब होती है, भले आप 4 बजे उठती हो। ऐसे में भी अपने पुरुषार्थ का मार्ग ढूंढ लेना। जगदीश भाई ने क्या किया था, यही मधुबन, लाइट नहीं होती थी हमारे, बिजली उन दिनों यहाँ बहुत महंगी थी आबू में, क्योंकि सारे आबू की बिजली जनरेटर से आती थी, बड़ा जनरेटर था आबू के लिए, फिर ये लाइन बिछाई गई तब बिजली सस्ती हुई। तो रात को हमारे यहाँ बस 3-4 बल्ब जलते थे चारों ओर, हम लोग भी रात को पहरा दिया है 2-2 घंटे, तो 3-4 बल्ब जलते थे, डर भी लगता था क्योंकि चारों ओर बाउंड्री लाइन नहीं थी, उधर इधर तो था ही नहीं, कुछ खुला ही था। हम छोटे छोटे थे, घूमने जाते थे, फटाफट चक्कर लगा के भाग आते थे, अंधेरा होता था। जगदीश भाई को बाबा ने काम दिया था कुछ लिखने का रात्रि क्लास में, सबने तो शौचालय ही नहीं है, कल करेंगे, और उन्होंने क्या किया, बाहर जो गवर्नमेंट की लाइट जलती है ना, वो कितनी छोटे बल्ब होते थे उन दिनों, आजकल तो हैलोजन आ गए, उसके नीचे बैठ के काम कर दिया। तो उसके एक काम करने से ही बाबा राजी हो गए, उसको वरदान मिल गया। वो भी सोच सकता था कल करेंगे, बाबा को भी तो पता है लाइट नहीं है, कह देंगे ना लाइट नहीं थी बाबा, यहाँ जला नहीं सकते थे रात को, एक साथ सब सोए हुए हैं। लेकिन अपना मार्ग निकाल लिया, हम भिन्न भिन्न पुरुषार्थ में अपना मार्ग स्वयं निकालना जाने, हम बहुत बिजी हैं इसलिए हम योग नहीं कर सकते। ठीक है या गलत? मैं कहूंगा पूरा गलत। ऐसा कोई व्यक्ति बिजी नहीं है जिसके बाद दो चार घंटे न बचते हों, बचते हैं, लेकिन वो इधर उधर की बातों में निकल जाते हैं, वो छोटे मोटे कामों में निकल जाते हैं। कई लोगों की काम करने की विधि ऐसी होती है कि एक घंटे का काम होगा उसमें तीन घंटे लगाएंगे। हमें काम करने की कला में भी प्रवीण होना चाहिए, ताकि ज्यादा काम कम समय में करके अपने पुरुषार्थ का मार्ग ढूंढ लें। जब यज्ञ छोटा था, कहीं भी स्पीकर नहीं चलते थे, ये भी नहीं था माइक, पता है आपको, यज्ञ में माइक भी नहीं था बाबा के समय तक। बाबा के आगे एक रखा जाता था, वो डब्बा सा होता था हाथ जैसा, वो भी सामने, उस पे आगे नहीं, टेबल पे, तो इसलिए अच्छा कैच नहीं करता था आवाज। तब रिकॉर्डिंग के रिफाइन साधन तो थे नहीं, इसलिए मुरलियां ऐसी वैसी रिकॉर्ड हो गई ना। हम लोग किचन में आ गए सेवा करने, अब किचन में सेवा करनी है तो रोज मुरली मिस करनी है, स्पीकर तो वहां है नहीं, तो रोज मुरली कैसे मिस करेंगे, ये तो अपने से नहीं होगा। तो हम जल्दी जल्दी उठ के सब काम करके, उन दिनों मुरली शुरू होती थी 6:15 बजे, बाबा के समय से यही टाइम था, तो हम 6 बजे क्लास में पहुंच जाना, तो एक मार्ग निकला ना। और ये भी हो सकता है भाई काम बहुत है, कई लोगों को थोड़ा सा काम होता है और पहला काम करते हैं मुरली मिस करना। काम थोड़ा सा होता है लेकिन आएंगे ही 7 बजे काम करने, और फिर ये दिखाएंगे कि हमें बहुत काम है, मुरली तो हम सुन ही नहीं सकते ना, क्लास में आ नहीं सकते, लेकिन जिसको आना है उसे कोई ये छोटी मोटी चीजें रोक नहीं सकती। तो परिस्थितियों के मालिक हम या परिस्थिति हमारी मालिक? मैं तो तबीयत खराब है इसलिए योग तो नहीं कर सकते, मैं तबीयत खराब है इसलिए सेवा तो नहीं कर सकते, प्रश्न उठता है ना। हमारे पास ऐसी ऐसी बहनें रही जिनकी तबीयत खराब होती थी लेकिन खाना खिलाने के लिए बैठ जाती थी, कोई लाके बैठाता था उन्हें, हाथ ठीक थे, खाना खिलाती थी सबको। कहते थे हम सेवा के बिना तो बोर ही हो जाते हैं, पहली बात तो ये, सारा दिन वहां लेटे लेटे क्या करेंगे, आके बैठ गई, उनको लोग बैठा देते थे, ऐसे भी थे उठा के बैठाते थे सब्जी काटेंगी, ऐसी बहने थी नहीं उठा के बैठा सकते, उनके कमरे में दाल भेज दी साफ करेंगे। ये अपना मार्ग खुद ढूंढने की बुद्धिमानी है। जिसको श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है उसको छोटी छोटी बातें रोक नहीं सकती, इसलिए जो बुद्धिमान है और जिन्हें पुरुषार्थ करना है वो हर कार्य में हर परिस्थिति में पुरुषार्थ का मार्ग निकाल लेते हैं। बहुत सारी माताएं बहुत बैठी हैं, ये सोचती हैं घर का ये काम हो जाए फिर पुरुषार्थ में लगेंगे, मुरली सुनने नहीं जा रहे क्योंकि बच्चे की शादी है, शादी हो जाए फिर बहुत अच्छा करेंगे हम, शादी हो गई फिर आगे बताओ माताएं अनुभव, दो चार आगे बैठी हैं, बोलो बहू तो आ गई ठीक है फिर फिर कोई दूसरा काम निकल आएगा। और ऐसे भी लोग हैं बाबा के बच्चे, अभी मुझे कोई सुना रहा था, बच्चे की शादी है तो भी भाई सवेरे मुरली सुनने आया है, अगले दिन भी आया है, तीसरे दिन भी आया है, कहा ये तो काम चलते ही रहेंगे, बाबा की मदद चाहिए तो उसकी आज्ञा पे चलना ही पड़े, या बिना उसके मिल जाएगी मदद? हम शिकायत तो ये करें बाबा मदद नहीं करता, और हम बाबा की आज्ञाओं पे ही न चलें तो मदद मिलेगी? बिल्कुल नहीं। तो हमें अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ को परिस्थितियों के अधीन नहीं करना है, और परिस्थितियां और कुछ नहीं है, हमारा विचार है केवल, हमारा सोचने का तरीका है, हमारा निगेटिव चिंतन है केवल, नहीं तो परिस्थिति परिस्थिति है नहीं। कई लोगों ने आज तक सेवाओं के द्वारा अपनी हेल्थ को ठीक किया है, ये बहुतों के अनुभव हैं, टीचर बहनों के हैं, स्टूडेंट्स के हैं, बीमार हैं सेंटर में और लोग ज्यादा काम करने वाले नहीं, दो ही बहनें रहती हैं, सारी सेवाएं करनी है घर की भी, बीमारी को बोल के लग गए सेवाओं में, शाम तक तो ठीक ही हो गए। तो परिस्थितियों से घबराएंगे नहीं, सभी अपने अंदर संकल्प कर दें, परिस्थितियों से पावरफुल हम हैं, परिस्थितियां पावरफुल नहीं हैं। कौन है पावरफुल? कन्याएं बैठी हैं, बोलो, हम हैं, हम में से कौन? हमें तो ठीक, लेकिन एक स्वमान जोड़ दो, जो मास्टर सर्व शक्तिवान है। तो ये सच है कि मास्टर सर्व शक्तिवान के नशे में रहने वाले परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेंगे, क्योंकि शक्तियों के वाइब्रेशंस बहुत फैलते हैं। हम सभी को ये याद रखना, ये स्वमान केवल हमारे लिए नहीं है। अब जिस स्थान पे रहते हैं, टेलरिंग में आए हुए बहुत सारे भाई सेवा में, कौन कौन है हाथ उठाना जरा? अच्छा, थोड़े यहाँ आए हैं, बाकी वहां होंगे, भरा होगा ना अभी तो, बहुत आए हैं, अभी नहीं आए? अच्छा, मैं तो सोचा था बहुत भाई आए, टोली खिलाने आ जाऊं कल, कब आएंगे? तब टोली खिलाने आ जाऊंगा, बता देना मुझे, आ जाएंगे भाई ये लोग बहुत सेवा करते हैं, तो मैं देखता हूँ ना बेचारे, काफी आप लोगों के ड्रेसेज बनाते हैं सब, मधुबन वाले कितने हो गए आजकल, ज्ञान सरोवर मधुबन के 500 तो हो गए, सबके कपड़े ही नहीं सिलने हैं, एवरेज 6-7 ड्रेस भी लगाएं कितने कपड़े हो जाते हैं। बहने भी आती हैं, शांतिवन वाले भी आते हैं, क्योंकि वहां भी इतना स्टाफ नहीं है, वहां तो 500 भाई बहने हैं। तो ये सेवा, अब सेवा तो बहुत है ही, इससे भाग्य भी बनता है, लेकिन जिस स्थान पर आप हैं, हम बात कर रहे स्वमान की, आप उस स्थान पर रहते हुए काम काज करते हुए मान लो अभ्यास कर रहे हैं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, आप बीच बीच में 5 सेकंड के लिए इस फीलिंग में आते हैं, मिनट नहीं, केवल 5 सेकंड, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, तो किरणें पूरे डिपार्टमेंट में फैल जाएंगी, बाहर भी फैलेंगी पर पहले वहां फैलेंगी, और क्या होगा कि वहां का हर काम परफेक्ट होगा। सिलाई की आपके पास मशीनें हैं बहुत सारी, सब परफेक्टली काम करेंगी, और जहां वाइब्रेशंस खराब हों, मान लो लड़ाई हो रही 2-4 लोगों में, हमारे यहां नहीं, बाहर कहीं भी फैक्ट्री चल रही है, 25 लोग काम कर रहे हैं और 4-5 लोगों में मनमुटाव है, तो उनकी मशीनें खराब होंगी, किसी का हाथ कट जाएगा, किसी की उंगली कट जाएगी, नुकसान होंगे, वाइब्रेशंस का बहुत जबरदस्त इफेक्ट है। ये बात सभी को याद रखना है। जिस स्थान पर माताओं का घर हो, टीचर बहनों का सेंटर हो, कन्याएं बहुत सारी आई हैं, आप पढ़ती हो या आप अपने घर में रहते हो, जिस स्वमान का आप अभ्यास करेंगे उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे। तो ये बहुत बड़ा काम वातावरण को, वाइब्रेशंस को बदलने का होता है। इसलिए मैं माताओं को एक चीज कहता हूँ, बहुत भोजन बनाते हुए बहुत अभ्यास करो। कौन सा? माताएं बताएंगी, अगर करती होंगी उन्हें ही पता है। बोलो, क्या बोला? मैं परम पवित्र आत्मा हूं। करते नहीं है, याद किया कि क्लास में बताते हैं, यही ना। अगर आप मान लो एक घंटा भोजन बनाना है, घर में तो ज्यादा टाइम लगता है, और आपने बहुत याद किया, ज्यादा मैं नहीं कहता 25 बार याद किया, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, तो आपके घर में पवित्र वाइब्रेशंस फैल गए, आपके ब्रेन में पवित्र वाइब्रेशंस फैल गए जिसका पता ही नहीं किसी को, आपके भोजन ने उन वाइब्रेशंस को ग्रहण कर लिया और आपको एक अलौकिक रस प्राप्त होगा जो आपको व्यर्थ से मुक्त रखेगा। कितने फायदे हैं। तो ये अभ्यास हमें करने चाहिए, इससे अपनी स्थिति भी श्रेष्ठ होगी और परिस्थितियां भी इन वाइब्रेशन से स्वतः ही हल हो जाएंगी। बीमारियां भी संसार में इसलिए ज्यादा बढ़ रही हैं क्योंकि मनुष्य व्यर्थ बहुत सोच रहा है, निगेटिव बहुत सोच रहा है, परेशानी आती है परिवारों में तो ज्यादा सोचते हैं, फिर नींद नहीं आती, डिस्टर्बेंस होता है और बहुत बीमारियां बढ़ जाती हैं। आजकल ये सब चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है दुनिया में, मानसिक रोग भी और उसके कारण शारीरिक रोग भी। कोई बहन अभी मुझे मिली 2-3 दिन पहले, का ब्रेन में पता नहीं क्या हो रहा है, श्याम होती है, का 5 बजते 6 बजते हैं और ब्रेन में गड़बड़ होने लगती है जो मुझे फिर रात को सोने नहीं देता। ये आजकल ज्यादा हो रहा है। मैं क्लासेस में बहुत बार सुनाई है ये बात, ये रहस्य है इस सृष्टि चक्र का, क्योंकि हम अंत में पहुंच गए हैं तो जो सबके विकर्म हैं, विकार हैं, वो बाहर जाके नष्ट होंगे, तो निकल रहे हैं, जागृत हो रहे हैं ब्रेन में, तो उसको शांत करने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास, अच्छे योग का अभ्यास, ऐशरीरीपन का अभ्यास, अच्छे चिंतन का प्रभाव बहुत जरूरी है। नहीं तो ब्रेन हाइपर एक्टिव होता है, फिर बीमारियां बढ़ती हैं, नींद भी नहीं आती। इस बात से सभी को संभलना है। आने वाला समय ये सीन बहुत लेकर आ रहा है, इसलिए अपने चित्त को शांत रखना। अभी ये डॉक्टरों की समझ में भी नहीं आएगा, वो तो एक गोली दे देंगे कि शाम को तुम्हारा ब्रेन काम ही ना करे, सुला दे तुम्हें, बस तुम सुखी, अब वो कुछ सोचेगा ही नहीं, सो जाओ परमानेंट, सवेरे 8 बजे तक सो जाना, मुरली भी मिस, अमृत वेला मिस। लेकिन अगर हम योग बहुत अच्छा करेंगे, अगर अपने चित्त को हमने शांत रखना सीख लिया तो ये सब नहीं होगा। इसलिए मैं आपको एक बहुत सुंदर लाइन बोल रहा हूं, सभी इस पे काम करेंगे। जो मनुष्य इस संगम युग पर ईश्वरीय ज्ञान लेकर अपने चित्त को शांत कर ले वही बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, और जिसने भिन्न भिन्न बातों में अपने चित्त को जरा परेशान कर लिया तो उसकी परेशानियां बढ़ती जाएंगी। अब ये समय ऐसा आ रहा है, ये परेशानियां बढ़ती ही जाएंगी, अगर आप इनको कंट्रोल नहीं करते तो ये तूफान बनेंगी। बहुतों को अनुभव हो रहे, एक जाती है पहले ही दूसरी तैयार है, हो जा रही है तीसरी तैयार है। इसलिए इन परिस्थितियों में लंबा समय लगाना पड़े, शक्तियां खर्च हो, पैसा भी खर्च होता है, इन सब से बचने के लिए अपने को कुछ समय दें सभी। नहीं तो इन परिस्थितियों में उलझने के बाद समय भी नहीं मिलता, फिर दो लोग बीमार हो गए घर में, अब उनके पीछे लगना पड़ जाता है ना, पैसा भी जा रहा है, चिंताएं भी बढ़ रही हैं, टेंशन भी रहता है, बीमारों के साथ लगने से मनुष्य खुद भी बीमार हो जाता है, फिर नींद भी नहीं मिलेगी। इसलिए अभी अपने को समय दे दो, परिस्थितियों को समय दें, उससे अच्छा है अपने को समय दे दो, अपनी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए। देखो जो भी भाई बहन मधुबन में ठहरे हुए हैं, उनके पास बहुत सुंदर अवसर है ना, बहुत सारे स्थान है योग करने के, चारों धाम यही बाबा ने स्थापित कर दिए, फायदा उठा लो, रूढ़िहान करके अपने को हल्का कर दो, पावरफुल बना दो, है सब चारों बातें बता देना, लिखी हुई भी हैं, तो फायदा उठाओ। यहां जब आप आए हैं और रहे हैं तो जीवन साधारण न रह जाए, बातों में यहां भी समय न निकल जाए। कई लोग आते हैं ना, यही देखते रहते हैं कहां क्या हो रहा है। आप तो खैर यहां नहीं, माताएं बहुत हैं, पर शांति वन में जब बड़ा ग्रुप होता है 50-100 लोग तो ऐसे आएंगे ही 25,000 में से, जो केवल ये देखते हैं कहां क्या हो रहा है, कौन गड़बड़ कर रहा है यहां, उसका पता करना हमें पहले, तो न उन्हें क्लासेस से लेना देना होता, बाहर घूमेंगे, बाजार में जाएंगे, समाचार लेन देन करेंगे, और कुछ लोगों से मिलेंगे जो उनके दोस्त होंगे। अब ऐसे लोगों के दोस्त भी तो ऐसे ही होते हैं ना, ये अच्छे होंगे, अच्छे दोस्त हो तो वो तो बड़े भाग्यवान है, वो उन्हें कहेंगे ज्ञान योग करो, नहीं तो यही सब देख लेते हैं। देखा खाने पे बहुत भीड़ लगी हुई है, यहाँ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। अरे भाई जब 25,000 लोग हैं तो भीड़ तो लगेगी, जो बुद्धिमान है वो आधा घंटा बाद जाते हैं, आधे लोग खा लें फिर चलेंगे, ठीक हो जाता है ना, शांति भी, और ये जो अवगुणी दृष्टि है ये भी समाप्त। तो हमें गुण ग्रहण करना है, और ऐसे स्थान पर आकर जो संसार में सबसे अधिक पावन है या नहीं, जहां हम बैठे हैं सबसे महान तीर्थ तो यही बनने वाला है ना, अब समय आ गया है। इसलिए महान तीर्थ आप ही नहीं बन जाएगा, कोई बाबा बोर्ड नहीं लगवा देगा बाहर की ये संसार का महान तीर्थ है। हम सबको महान तपस्या करते हुए, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस यहां फैलाते हुए, इस महान स्थान को महान तीर्थ बनाना है। देंगे इसमें सभी योगदान, ये बाबा का संकल्प है ना, कब से मुरलियों में आ गया था 68-67 में ही, ये महान तीर्थ बनेगा। यहाँ दर्शन करने के लिए लाखों लोग आएंगे, ये होगा यहाँ कि इस प्रांगण में प्रवेश करेंगे, लगेगा कहाँ गए, किसी को साक्षात्कार होने लगेंगे, किसकी बीमारियां ठीक होंगी, कोई बहुत हल्के हो जाएंगे आते ही, चिंताएं और बोझ लेकर आए थे हल्के हो गए, किसके रोग शोक समाप्त हो जाएंगे, ये धूम मचने वाली है। लेकिन इसकी स्थापना किसको करनी है, हम सोचे बाबा ही ऊपर से कर देगा अपनी लाइट देकर, वो तो करेगा ही, पर पहले ये काम हम सबको करना है। इसलिए यज्ञ निवासी, यज्ञ सेवाधारी, और आप सभी यज्ञ के जिम्मेदार सभी हैं ना बाबा के बच्चे, यहाँ अच्छी साधना करें, जितना हो व्यर्थ से मुक्त, क्योंकि व्यर्थ में रहना माना चारों व्यर्थ वाइब्रेशंस फैलाना, तो जो महान कार्य है महान तीर्थ बनने का, उसमें बाधा पड़ेगी ना, तो इसका लोस उस आत्मा को बहुत होगा। इसलिए जो व्यर्थ में रहते हैं वो समझ लें इस महान कार्य में बाधक हैं, विघ्न डालते हैं, इससे हमें बचना है, तब हम बाबा का बहुत ब्लेसिंग प्राप्त करेंगे, उसके कार्यों को जो सफल करते हैं उनको उसकी बहुत दुआएं मिलती है ना। और ये बात हम सबको अच्छी तरह ख्यालों में रखनी है कि इस समय भगवान हमको दुआएं दे रहा है। राजी हुआ है या नहीं बोलो, किस किस पे राजी हुआ है? नहीं सब नहीं, थोड़ो ने हाथ उठाया, धीरे धीरे उठाए। माताओं ने सोचा सभी उठा रहे तो हम भी उठा दें। राजी हुआ है सचमुच आपको लगता है? भगवान राजी है तो उसकी नजर हम पे रहती है, तो हमारी नजर कहाँ रहेगी? उसकी नजर हम पे और हमारी नजर इधर उधर, चलेगा काम? सच तो यही है, उसकी नजर उन पर रहती है जिसकी नजर इस संसार में नहीं भटकती, जिसकी नजर उन पर है, उसकी आज्ञाओं पर है, उसकी श्रेष्ठ आशाएं पूर्ण करने पर है, तो उसकी नजर है हम पे, ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज होगी उसके प्यार की सूक्ष्म फीलिंग होती रहेगी, हमें फील होता रहेगा वो हमें मदद करता है। कभी भी हम अपने को उसकी मदद से वंचित अनुभव नहीं करेंगे। बहुत सूक्ष्म बात है ये। उसकी मदद में कभी कभी देर लगती है, देर माना दो चार साल नहीं। कोई सोचो दो चार साल की देर लगेगी, एक दो चार घंटे। अभी हमने बाबा के सामने कुछ रखा है, वो मदद देगा। एक बात है कि हम उसे रिसीव करते हैं या नहीं, हम उसे पकड़ पाते हैं या नहीं, वो दे रहा हो और हम ले ही न रहे हो, हम उसकी बातों को कैच ही न कर पा रहे हो, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसलिए अपनी बुद्धि को बहुत स्वच्छ रखना चाहिए, व्यर्थ में एंगेज नहीं। भगवान राजी होगा तो हम भी अपने पुरुषार्थ से राजी होंगे। वो उन पे ही राजी है जो स्वयं से राजी हैं, और जो असंतुष्ट हैं उन पर वो राजी नहीं है। किसी भी कारण असंतुष्ट, अप्राप्तियों का अनुभव संसार में भी, ये अच्छी स्थिति नहीं है। जो कुछ हमारे पास है उसमें हम तृप्त रहना सीख लें। और एक बात और मैं आपको कहूंगा, सभी गृहस्थ वाले बहुत बैठे हैं परिवारों में, एक दूसरे के व्यवहार से असंतुष्ट नहीं होना है। बात बड़ी है, चैलेंजिंग है, साथ ही ऐसा व्यवहार करें। माताओं के घर में नई आत्माएं आए वो ऐसा वैसा व्यवहार करें। आजकल लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं, सास को भाव नहीं देती, सभी की बात नहीं थोड़ी, तो उससे ठीक से मिलन करना भी आना चाहिए। और मैं ये कहता हूं माताओं को खास, कि अगर आपके घर में आई हुई नई आत्मा योग्य है, पढ़ी लिखी है, उसको सम्मान दो, प्यार दो। प्यार और सम्मान में दूसरों को बदलने की शक्ति है, है या नहीं? माताओं ने कईयों ने किया होगा, मुझे पता है। कई माताएं पत्थर को भी पिघला देती हैं, ताकत है आप में ये, बस अहम टकराए नहीं। नई आत्माएं कैसी भी आएंगी, कई तरह की घटनाएं आजकल हो रही हैं, वो आपके बच्चे को आपसे बिल्कुल दूर भी कर सकती है, आपसे मिलने ही न दे, ये भी हो रहा है आजकल परिवारों में। इसको भी ठीक करना है। ये परिस्थितियां माँ के लिए बाप के लिए बहुत भारी पड़ती हैं। कई सुनाते हैं हमें आप ही, कितना भारी हो गया है खेल, माँ तो बेचारी डिप्रेशन में आ गई, बच्चा उसका 25 साल उसके पास रहा, बहू आई अब मिलने नहीं देती है, अब तुम केवल मेरे हो माँ के नहीं। ये सब परिस्थितियां हैं परिवारों में, अब माताएं किसी को बता भी नहीं सकती, उदास हो जाती हैं। नेचुरल बात है, उदासी आएगी, डिप्रेशन होगा। लेकिन आप अपनी श्रेष्ठ स्थिति को यदि न खोएं, फिर वही शुरू वाली बात, अगर श्रेष्ठ स्थिति को न खोएं तो ये परिस्थिति या तो आपके पास आएगी नहीं, आएगी तो जल्दी ठीक हो जाएगा। इसलिए स्वस्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए समय निकालना है। अंतिम खेल चल रहा है संगम युग का। मैं एक बात फिर आपको कह दूं, क्लास में कहना ही अच्छा होगा, इस बात के बारे में सभी सावधान रहेंगे, ये निश्चय की परीक्षा का भी समय चल रहा है। कई जगह बाबा आने लगे हैं, बहुत बाबा हो गए आजकल दुनिया में, बहुत बाबा हो गए ना, गड़बड़ हुई पीछे। अभी एक दो केस तो ऐसे जगह हो गए, सारी क्लास ही उस बाबा के पास चली गई। अब बेचारी बहनें देखती रह गई, अब क्या करें इसमें हम। कहीं भी कोई भी कह देता है मेरे तन में बाबा आते हैं, और माताएं सबसे आगे रहती हैं बाबा से मिलने में। बता रहा था एक भाई, उसका एक बहन बता रही थी, उसका पति थोड़ा बहुत संपर्क में है, वो से कह रहा है तुम मधुबन में जाती हो बाबा से मिलने, यही बाबा आ रहा है, उससे क्यों नहीं मिलती, वहाँ पैसा खर्च होता है, छुट्टी लेनी पड़ती है, यही मिल लिया करो, उसको पूरा ज्ञान तो नहीं है। इन सब चीजों से बचेंगे। ये कुछ आत्माएं अब हो सकता है वो अच्छी आत्मा हो, कोई भटक गई हो, वो प्रवेश कर लेती है, फीलिंग भी अच्छी देती है, कोई ज्ञानी भी होते हैं थोड़ा बहुत ज्ञान भी दे देते हैं, लेकिन आप सबको पता हो बाबा कहीं नहीं आता। उसको आना है तो उसका स्थान और रथ निश्चित है। इसलिए इसमें बहुत कुछ संशय उठ रहे हो, निश्चय की परीक्षा में फेल हो रहे हैं, और बाबा के इस यज्ञ में क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस, विघन पड़ रहा है। इसलिए सभी इन चीजों से बचेंगे, बचेंगे या नहीं, या बाबाओं के पीछे जाएंगे, क्या करेंगे मधुबन में आके, बाबा तो हमारे पास ही आ रहा है। पक्का समझ लो बाबा मधुबन के सिवाय कहीं नहीं आएगा, ये उसने वचन दिया हुआ है। और जिस तन को निश्चित किया गया, नियुक्त किया गया, उसी में आएगा, सब में नहीं। ये बात सभी के ख्याल में रहे तो हमें बाबा की मदद भी मिलती रहेगी, नहीं तो अनेक आत्माएं इस निश्चय के पेपर में फेल हो रही, आएंगे तो फिर वहीं, क्योंकि वो आया हुआ बाबा कुछ ही दिनों में बता देगा मैं बाबा नहीं हूँ। ये पक्का समझ लो आप, ये पक्का समझ लो, जो कई जगह ये केस हो गए हैं, कईयों ने तो 3 दिन में बता दिया मैं बाबा नहीं हूँ। एक डॉक्टर की तो बहुत अच्छी कहानी है, मैं सुनाऊंगा नहीं, वो आत्मा उस डॉक्टर को लेके शांतिवन में आ गई मेरे से मिलने, और आ गई, मैं मिला, बताया उसने मुझे कहा मैं डॉक्टर के तन में आई, पहले तो मैंने कहा मैं श्री कृष्ण हूँ, ये बड़ा खुश हो गया श्री कृष्ण मेरे तन में, फिर कहा नहीं मैं शिव बाबा हूँ, तो कहा मैं इसे कष्ट नहीं देता था, मदद करता, बॉम्बे का डॉक्टर है, मैं इसे मदद करने लगा, ये खुश होने लगा, तो बहुत अच्छी कहानी थी। फिर मैंने उससे कहा कल आना मेरे पास और मैं तुम्हें राजयोग सिखाऊंगा, तुम इसके तन में रह के क्या करोगे, तुम्हारी मुक्ति हो, तुम नया शरीर, सब बताया उसने, मैं कहाँ भटक गया, बॉम्बे के रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से मर्डर वो कट गया था, मैं तब से भटक रहा था, मैं देखा है डॉक्टर बहुत अच्छा है, योग करता है, इसके तन में मैं आ गया, मुझे बड़ी शांति मिली, फिर मैंने उसको 15 मिनट में योग सिखाया, उसको बताया कि तुम योग किया करो। तो ये सब बहुत होता है, इसलिए हमें जो रियल में बाबा है उससे दूर नहीं होना है, उसकी मदद के भी पात्र हम तभी बनेंगे, और ये निश्चय की परीक्षा भी है, इसमें नंबर प्लस और माइनस भी बहुत होंगे। जैसे भैगरी पार्ट में परीक्षाएं हुई थी वो भी निश्चय की थी, मोह की थी, अब भी ये निश्चय की परीक्षाओं का दौर चल रहा है, पर बहुत लोग इसमें असफल भी हो रहे हैं। ओम शांति। ठीक है, आपने सिग्नल दे दिया बहन जी।
घड़ी।